Hari Mo, Hari Mo, ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಇಸ್ಕನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಅನಂತಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತವೃಂದಕಿ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಜಯ ರೂಪ ಸನಾತನ ಭಟ್ಟ ರಘುನಾಥ್ ಶ್ರೀಜೀವಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟದಾಸ ರಘುನಾಥ್ ಷಡ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಗಣಕಿ ಪ್ರೇಮಶಕೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದಕಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಪುಣ್ಯ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜ ಗೋವರ್ಧನ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬ್ರಜ ಬೃಂದಾವನ ಧಾಮ ಕಿ ಶ್ರೀ ನವದೀಪ್ ಮಾಯಾಪುರ ಧಾಮ ಕಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಧಾಮ ಕಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರಾ ಸುದರ್ಶನ್ ಕಿ ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಿಕಾಧಾಮ ಕಿ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಿಕಾಧಾಮ ಕಿ ಶ್ರೀ ಅಯೋಧ್ಯಾಧಾಮ ಕಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಜಮುನಾದೇವಿ ಕಿ ವೃಂದಾದೇವಿ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಿ ಜುಗಧರ್ಮ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಕಿ ಸಮವೇತ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಸಮವೇತ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಶ್ರೀ 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 ಗುರು ಗೌರಾಂಗ ಕಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಂ ಉದೀರಯೇತ್ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಮಹಾಪುರಾಣ ಸುಪಾಠ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 4. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅಭಿ ಕುಚಿ ದಿನಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಆನೆ ವಾಲೆ ಹೇ ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾಕ್ಕೆ ದೌರಾನ್ ಹಮ್ ದಶಮ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಲೇ ರಹೇ ಹೇ ಐಸೇ ವಿಚಾರ ತೋ ಹೀ ಥಾ ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಕ್ಕೆ ಕಥಾ ಹೀ ಕರೇ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಸಮಯ ಜೋ ಹೇ ಯೇ ಭಾಗವತ್ಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹೇ ಕಥಾಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೋ ನಹೀ ತೋ ಇಸ್ಮೇ ಸೇ ಜೋ ಹೋಗಾ ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಭಾಗವತ್ ಹೀ ಲಿಯಾ ಕರೇ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ಹೀ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕಥಾ ಹೀ ಹೇ ತೋ 10:1-4 ನಿಭೀತ ತರ್ಷೇರ್ ಉಪಗೀಯಮಾನಾತ್ ಭವೋ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೋತ್ರ ಮನೋಭಿರಾಮಾತ್ ಕೋತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಗುಣಾನುವಾದಾತ್ ಪುಮಾನ್ ವಿರಜ್ಯೇತ ವಿನಾ ಪಶುಘ್ನಾತ್ ನಿಭೀತ ತರ್ಷೇರುಪಗೀಯಮಾನಾತ್ ಭವೋ ಸದಾತ್ಕೃಷ್ ಶ್ರೋತ್ರ ಮನೋಭಿರಾಮಾತ್ ಕೌತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಗುಣಾನುವಾದಾತ್ ಪುಮಾನ್ ವಿರಜ್ಯೇತ ವಿನಾ ಪಶುಘ್ನಾತ್ ಉಪಗೀಯಮಾನಾ ಶ್ಲೋಕ ಗುಣಾನುವಾದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿಭೀತ ತರ್ಸೇರ್ ಕಾಮ ತಥಾ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಮುಕ್ತ ಉಪಗೀಯಮಾನಾತ್ ಗಾಯ ಜಾನೆ ವಾಲಾ ಭವೋ ಸದಾತ್ ಭೌತಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಔಷಧಿ ಶ್ರೋತ್ರ ಕಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮನ ಮನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಭಿರಾಮಾತ್ ಬಹುತ್ ಸುಹಾವನಿ ಕ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಕೋನ್ ಭಗವಾನ್ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಗುಣಾನುವಾದಾತ್ ಉನ್ಕೆ ಲೀಲಾಓಂ ಕೆ ವರ್ಣನ ಕಾ ಪುಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯ ವಿರಜ್ಜೇತ್ ಅಪ್ನೆ ಕೋ ಅಲಗ್ ರಖ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಬಿನಾ ಪಶುಘ್ನಾತ್ ಜೊ ಕಸಾಯಿ ನಹೀ ಹೋ ಉನ್ಕೆ ಬಿನಾ ಅನುವಾದ ಎಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಕೇ ದ್ವಾರಾ ಅನುವಾದ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಪರಂಪರಾ ವಿಧಿ ಸೇ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಅರ್ಥಾತ್ ಯಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಸೇ ಶಿಷ್ಯ ತಕ್ ಪಹಂಚಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಐಸೆ ವರ್ಣನ್ ಕಾ ಆನಂದ ಉನ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಜೋ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಣನ್ ಮೇ ರುಚಿ ನಹೀ ರಖತೆ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಗುಣಗಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಕೆ ಚಕ್ರ ಮೇ ಫಸೆ ಬದ್ಧ ಜೀವೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಔಷಧಿ ಹೈ ಅತೇವ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಮಹಿಮಾ ಕಾ ಸುನ್ನಾ ಕಸಾಯಿ ಯಾ ಪಶುಘಾತಿ ಯಾ ಆಪ್ನೆ ಕೋ ಹೀ ಮಾರನೆ ವಾಲೆ ಆತ್ಮಘಾತಿ ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಕೋನ್ ನಹೀ ಚಾಹೆಗಾ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭಾರತ ಮೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಯಹ ಆಮ ಪ್ರಥಾ ಹೈ ಕಿ ಬಾರಂಬಾರ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಕೆ ರೋಗ ಸೇ ಛುಟಕಾರಾ ಪಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಾ ಭಾಗವತ್ ಸೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಸುನತೆ ಹೈ. ಯದ್ಯಪಿ ಅಬ್ ಭಾರತ ಪತಿತ್ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ ಕಿಂತು ವಹ ಸಮಾಚಾರ ಮಿಲ್ತೆ ಹೀ ಕಿ ಅಮುಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಾ ಭಾಗವತ್ ಪರ ಬೋಲೆಗಾ ಅಬ್ ಭಿ ಹಜಾರೋ ಲೋಕ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕತ್ರ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಕಿಂತು ಯಹ ಶ್ಲೋಕ ಇಂಗಿತ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಥಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಐಸಾ ಪಾಠ ಐಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರಾ ಕಿಯಾ ಜಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಜೋ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾಓಂ ಸೇ ಪೂರಿ ತರಹ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಚುಕೆ ಹೈ ನಿಭೃತ ತರ್ಸೇ. ಇಸ್ ಜಗತ್ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಕ್ಷಿದ್ರ ಚಿಟಿ ತಕ್ ಸಾರೇ ಜೀವ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಕಿ ವಿಷಯ ಇಚ್ಛಾ ಸೇ ಪೂರ್ಣ ಹೈ ಔರ್ ಹರ್ ಪ್ರಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮೇ ಲಗಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಕಿಂತು ಇಸ್ ತರಹ ಲಗೇ ರಹನೆ ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೋ ಚಾಹೆ ವಹ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಹೋ ಚಾಹೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಹೋ ಪೂರಿ ತರಹ ಜಾನ್ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ. ಯದಿ ಹಮ್ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷೋ ಕೆ ಮುಖ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಮಹಿಮಾ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಸುನೆ ತೋ ಇಸ್ಸೆ ಭವಬಂಧನ್ ಸೇ ಅವಶ್ಯ ಛೂಟ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ಕಿಂತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ಪೇಶಾವಾರ ವಾಚಕೋ ಸೇ ಸುನ್ನೆ ಪರ್ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇ ಕೋಯಿ ಸಹಾಯತಾ ನಹೀ ಮಿಲ್ ಸಕ್ತಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಅತಿ ಭಿ ಸರಳ ಹೈ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇ ವೇ ಸ್ವಯಂ ಬತಲಾತೆ ಹೈ ಮತ್ತ ಪರತರಂಗ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ್ ಮುಸ್ಸೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೋಯಿ ಸತ್ಯ ನಹೀ ಹೈ ಕೇವಲ ಇತನಾ ಹೀ ಜಾನ್ ಲೇನೆ ಸೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇ ಮುಕ್ತ ಹುವಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಕಿಂತು ಇಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಲೋಕ ಅಸಲಿ ಲಾಭ ಸೇ ವಂಚಿತ ರಹತೆ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೇ ಐಸೆ ಧೂರ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಸೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸುನ್ನಾ ಪಸಂದ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಜೊ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೋ ಯಥಾರೂಪ ಮೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾ ಕರ್ಕೆ ಉಸೆ ಆಪ್ನೆ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ತೋಡ್ತೆ ಮರೋಡ್ತೆ ರಹತೆ ಹೈ. ಬಡೇ ಬಡೇ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞ ದಾರ್ಶನಿಕ ತಥಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಪ್ನೆ ಹೀ ದೂಷಿತ ತರೀಕೆ ಸೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪರ ಪ್ರವಚನ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕ ಇನ್ಹೀ ಸೇ ಸುನ್ತೆ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೇ ಕಿಸಿ ಭಕ್ತ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಗುಣಾನುವಾದ ಕೋ ಸುನ್ನೆ ಮೇ ರುಚಿ ನಹೀ ರಖತೆ. ಅತಃ ವಹ ಹೇ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಥಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಪಾಠ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ಕೋಯಿ ಅನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ನಹೀ ರಖತಾ इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सलाह दी कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही भगवान का गुणानुवाद सुना जाए। भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने, जब तक कोई कृष्ण भावनामृत विज्ञान में सिद्धात्मा न हो तब तक नवदीक्षित को चाहिए कि वह उससे भागवत के विषय में सुनने के लिए न कहे, क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से निम्नलिखित उदाहरण देते हुए ऐसा करने से मना किया है। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतं हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पचिष्ठ यथापयम्। जो वैष्णव आचरण वाला ना हो उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव तो निवृत्त दर्श होता है, उसके कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना होता है। तथा कथित विद्वान दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ स्वार्थवश भगवद्गीता की अर्थ को तोड़ मरोड़ करना करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इसलिए यह श्लोक सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वाचन वही करे जो निवृत्त तृष्ण हो। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद्भागवत के आदर्श उपयुक्त वाचक है और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राज्य तथा परिवार को किसी उद्देश्य से छोड़ने वाले परीक्षित महाराज आदर्श श्रोता है। श्रीमद्भागवत का योग्य वाचक बद्ध जीव को सही औषधि प्रदान करता है, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे योग्य प्रचारकों को प्रशिक्षित करने में प्रयत्नशील है जो सारे जगत में श्रीमद्भागवत तथा श्रीमद्भागवत गीता का वाचन कर सकें, जिससे विश्वभर के सामान्य जन इस आंदोलन का लाभ उठा सकें और भौतिक संसार के तीनों तापों से छूट सकें। भगवद्गीता के आदेश तथा श्रीमद्भागवत के वर्णन इतने मनोहारी है कि भौतिक संसार के तीनों तापों से तप्त प्राय प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों से भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा और मुक्ति के मार्ग में लाभ उठाना चाहेगा। किंतु दो प्रकार के लोग अभी भी कभी भी श्रीमद्भागवत गीता तथा श्रीमद्भागवत के संदेश को सुनने में रुचि नहीं लेंगे। एक वे है जो आत्महत्या करने पर तुले हैं और दूसरे वो है जो अपने स्वाद के लिए गौ तथा अन्य पशुओं का वध करने पर तुले हुए हैं। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय श्रीमद्भागवत सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु वह कर्मीजनों की दूसरी सृष्टि है जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इस संबंध में पशुघ्नात शब्द महत्वपूर्ण है। पशुघ्न का अर्थ है कसाई। उच्चतर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों को यज्ञ करते समय पशुओं का वध करना होता है, इसलिए भगवान बुद्ध देव ने वेदों के प्रमाण का तिरस्कार किया, क्योंकि ये पशु बलि को रोकना चाहते थे। जिनकी वैदिक अनुष्ठान में संस्तुति की गई है, निंदति यज्ञ विधे रह सुति जातं सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। यद्यपि वैदिक उत्सव में पशु बलि को सामान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसे उत्सव के लिए जो व्यक्ति पशुओं का वध करते हैं वे कसाई या पशुघ्न माने जाते हैं। भला कसाईयों को कृष्ण भावनामृत में कैसे रुचि हो सकती है? जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिला रहता है, उनकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाएं उत्पन्न करने में होती है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिर समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त रहते हैं, उनके मनों में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं बन पाता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाभ जिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और जो इस तरह जो भगवान की सेवा में अपने को नहीं लगाता, वह भी पशुघ्न है, क्योंकि वह जानबूझकर विष पीता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती, क्योंकि उसमें इंद्रिय तृप्ति की लालसा शेष रहती है, वह निवृत्त तृष्ण नहीं होता। जैसा कि कहा गया है, त्रिवर्गिकास्ते पुरुषा विमुरवा हरिमेधसा। जिन्हें त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ तथा काम में रुचि रहती है, वे भौतिक पद प्राप्त करने तथा उसके द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने की दृष्टि से धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अपने को जानबूझकर जन्म मरण के चक्र में डालकर अपनी हत्या करते हैं। कृष्ण भावनामृत में कभी भी रुचि नहीं ले सकते। कृष्ण कथा के लिए वक्ता तथा श्रोता होना चाहिए और ये दोनों कृष्ण भावनामृत में तभी रुचि ले सकेंगे जब उन्हें भौतिक कथाओं में रुचि न हो। वास्तव में यह हर कोई देख सकता है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित है उनमें यह प्रवृत्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण तरुण व्यक्ति हैं, किंतु वे भौतिक तबादी अखबार पत्रिकाएं आदि नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें ऐसी कथाओं में रुचि नहीं होती। निवृत्त तरसे वे देहात्म बुद्धि के सर्वथा परित्याग कर देते हैं। गुरु उत्तम श्लोक अर्थात भगवत भगवान विषय कथाओं को कहता है और शिष्य ध्यान से उन्हें सुनता है। जब तक दोनों भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेते तब तक उन्हें कृष्ण भावनामृत की कथाओं में रुचि नहीं हो सकती। गुरु तथा शिष्य को कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कृष्ण को समझना तथा कृष्ण के विषय में बातें करने मात्र से ही व्यक्ति पूर्णतया विद्वान बन सकता है। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवन्ति। भगवान हरेक के हृदय में आसीन रहता है और उनकी कृपा से भक्त को भगवान से ही सीधे आदेश प्राप्त करता है। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं हरेक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। सारे वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ, मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ, वेदों का ज्ञाता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतना उच्च है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुरु के निर्देशन से श्रीमद्भागवत भगवद्गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्राय कृष्ण कथा को पढ़कर तुष्ट रहता है। जब कृष्ण के विषय में केवल बातें करना इतना सुहावना लगता है तो फिर कृष्ण की सेवा करना कितना सुहावना होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। जब मुक्त गुरु तथा उसके शिष्य के मध्य कृष्ण कथा पर वार्ताएं होती है तो अन्य लोग भी कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लाभ उठाते हैं। ये कथाएँ जन्म मृत्यु चक्र को रोकने वाले रामबाण औषधि के कार्य करती है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु का चक्र, जिससे मनुष्य का पुनः पुनः विभिन्न शरीर धारण करने होते हैं, भव या भव रोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा या अनिच्छा से कृष्ण कथा सुनता है तो उसका भवरोग अर्थात जन्म मरण का रोग निश्चय ही जाता रहता है। इसलिए कृष्ण कथा को भवौषधि, जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने की औषधि कहा गया है। कर्मीजन जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, सामान्यतया अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण कथा ऐसी रामबाण औषधि है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित होने पर वह इस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इसके ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज है, जो अपनी तपस्या के बाद अत्यंत तुष्ट थे। जब भगवान ने उन्हें वर देना चाहा तो ध्रुव ने वर लेने से मना कर दिया। स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरं न जाचे। हे प्रभु, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में युवकों तथा युवतियों तक अपनी बुरी आदतें जैसे अवैध जोन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलना छोड़ देती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल है कि इससे उन्हें पूर्ण संतोष मिलता है, अतएव वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं लेते। ओम अज्ञानं तमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोहिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನಿತಂಸ ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರವಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. तो ये श्रीमद्भागवत के दसम स्कंद के प्रथम अध्याय के एक अति महत्वपूर्ण श्लोक है. दसम स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित महाराज सुकमुनि को ये जिज्ञासा किए कथितो वंश विस्तार. सुखदेव गोस्वामी को विस्तार से इन वंश के बारे में वर्णन करने के लिए बोले, क्योंकि उस दसम स्कंद के पहले नौवां स्कंद चल रहा था. नौवां स्कंद में वंशांड वर्णन किया गया, सर वंशावली वर्णन किए, विशेष करके चंद्र वंश सूर्य वंश सब वर्णन किए. इस सूर्य और चंद्र वंश के वर्णन को सुनने के बाद में परीक्षित महाराज एक्साइट हो गए. एक्साइटेड बोलते हैं कि गुरु जी इतने से नहीं, थोड़ा और डिटेल, मोर डिटेल में बोलिए उसको. क्या बोलूं डिटेल में ना, आप इतने सारे वंश, मुझे कुल दो वंश चाहिए, सोम सूर्य ये हो, सोम वंश और सूर्य वंश. सोम माने चंद्र, यद्यपि हम देखते हैं कि सूर्य के बाद चंद्र आता है, संडे के बाद मंडे आता है, लेकिन परीक्षित महाराज उल्टा पूछते हैं. पहले बोलते हैं मंडे, बाद में संडे, पहले सोम वंश का वर्णना करो, बाद में सूर्य वंश का वर्णना करो, क्योंकि उनके इष्टदेव का जन्म सोमवंश में हुआ था, चंद्रवंश में हुआ था, इसीलिए विशेष करके उसी को वर्णन करने के लिए वो कहते हैं. और आगे चलकर कहते हैं कि सोमवंश का वर्णन को, नहीं नहीं नहीं, वो तो वर्णन जदुस्य धर्मशीलस्य, उसमें जदु का वंश का वर्णन करो, क्योंकि धर्मशील है. क्यों जदु वंश का वर्णन जाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण इसमें आएंगे जादव के रूप में. तो और उनको विस्तार से वर्णन करने के लिए बोलते हैं विशेष करके. तो शायद सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, देखो मैं तो नौवां स्कंद बोलते बोलते आया भगवान के भगवत्ता वंश विस्तार, अभी ये विशेष करके इस चंद्रवंश का विस्तार सुनना चाहता है. मैं समझ रहा हूँ चंद्रवंश में, चंद्रवंश का जो मुख्य है भगवान के अवतार भगवान कृष्ण आएंगे, कृष्ण चंद्र, तो उन्हीं का वर्णन सुनने के लिए लोग है, वही सुनना चाहता. लेकिन कृष्ण कथा तो अनंत है, अनंत कृष्ण कथा को मैं कैसे वर्णन करूं, उसको अंत तो किया नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि बड़े बड़े अनंत देव आदि आदि बड़े बड़े उसको आकर के पार नहीं पाया, मैं क्या बोलूं और ये क्या सुनेगा. तो अगर मैं उसको बोलूं तो थोड़ा देर के बाद उनका पेट भर जाएगा, कान भर जाएगा, बोले ठीक है अभी आगे चलिए, ओके प्लीज गो अहेड, वही बोलेगा. साधारण संसार में ही होते हैं. सो सुखदेव को समय ही सोचे, बोले राजा का इंटरेस्टेड होता है सुनने के लिए अपने परंपरा के बारे में, जब मैं डिटेल जाऊंगा तब वो स्वयं मना कर देगा. क्योंकि ये भौतिक संसार के एक नियम है, आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे जानते होंगे, आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपको कोई चीज में बहुत सुख मिलता है, वेरी एक्साइटेड, जैसे गरम गरम गुलाब जामुन मिले, ओह रियली मैं इसको पाना चाहता हूँ, एक दिया गया वेरी टेस्ट, सेकंड और मोर टेस्ट, थर्ड और मोर टेस्ट, फोर्थ में थोड़ा घटेगा, 5, 6, 7, 8 में उल्टी आने लगेगा, स्टॉप इट, और नहीं चाहिए, है ना. नहीं तो इसे बढ़े करके फिर घट कर फिर खत्म हो जाता है. यही साधारण नीति देखा जाता है श्री श्री रुक्मणीदारिकाधीश की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, निताय गौर सुंदर की. तो ही सुखदेव का समय, अभी तो मजा लगता है तुझे, लेकिन मैं जब डिटेल में जाऊंगा तो थोड़े और इच्छा होगा, बस बस ठीक है अभी आगे चलिए. क्योंकि आगे ना ये साधारण संसार के नियम है. तो शायद सुखदेव को स्वयं मन में विचार करके वो शॉर्टकट करके चले जाए आगे, तो इसलिए ये श्लोक परीक्षित महाराज कहते हैं, हे गुरु जी ऐसा मत सोचिए, मेरा तृप्ति होता ही नहीं, और कोई तृप्ति नहीं होंगे, मेरा क्या, मैं तो लायक नहीं हूं। तो इससे इस संसार के जीवों को तीन प्रकार कैटागोरियों पर परीक्षित महाराज बांटे। तीन प्रकार के लोग संसार में देखे जाते हैं। प्रथम कोटि के हैं मुक्त जीव, दूसरे कोटि में है मुमुक्ष जीव, और तीसरे कोटि में आते हैं विषयी। ये तीन प्रकार से ग्रेडेशन किया गया, मुक्त, मुमुक्ष और विषयी। मुक्त किसी को कहा जाता है जिनका भोग वासना से मन हट गया है, मुक्ति पा चुका। भोग वासना से मतलब उन्हीं को निवृत्त तरसे ही कहा गया है इस श्लोक में। निवृत्त तृष्णा जस्य सह, तृष्णा होता क्या है, क्योंकि हम प्रत्येक शरीरधारी हमारे पांच मैसिन फीट हुआ है अपने तृष्णा पूर्ति करने के लिए, चक्षु, नासा, कर्ण, जिह्वा और त्वक, यही पांच के द्वारा हम विषय भोग करते हैं और करते ही आनंद काल से हमेशा उसी चक्कर में रहते हैं। इस पांच मशीन के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तो हम भोगते हैं और क्या है, चाहे किसी प्रकार भोग करो इसी पांच के अंदर आएगा। जो इस चक्षु नासा कर्ण त्वक जिह्वा द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषय को भोग में लगा हुआ है, उनका मन भरा नहीं है, उनको कहा जाएगा मुख्य। वो चाहता है और भोगना चाहता है, वो मुख्य कैटागोरी के। वो जो भोग करके मन भर गया, नहीं और नहीं चाहे, उससे मन हट चुका है, तृप्त हो चुके हैं, तो उनको मुक्त पुरुष माना जाए। उनके मन हट चुका है, अब इस प्रकार के विषय वो सुख नहीं चाहते हैं और अंतर्मुख हो गए हैं जो लोग, उन मुक्त कोटि में कहा गया। जिनका ये संसार से किसी प्रकार से भोग इच्छा नहीं, बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं और संसार से परे की चीज भगवत कथा में, जिसका भगवान में रुचि, भगवत कथा में रुचि आ चुका है, उनको परमहंस मुक्त ऐसे कहा गया है। और जिसे मैं कहा जो उनको भोग में चक्कर में पड़े हैं, उसको और अच्छा से भोगने के लिए नाना प्रकार के विचार करते हैं, चेष्टा करते हैं, और जरूरत पड़े तो बड़े बड़े यज्ञ, पशु बलि आदि दे करके और ऊपर प्रमोशन जाने के लिए, उच्च लोक को जाने के लिए, क्योंकि भोग की सुविधा और ऊपर में और अच्छा है, और सुविधा भोग के प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। और उनका आकांक्षा भोग के लिए है, और कभी भोग से उब करके ज़्यादा से ज़्यादा उठ करके उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, वो मुमुक्षु हैं। जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं वो मुमुक्षु हैं, और जो मुक्त हो चुके हैं वो तो मुक्त हैं, और जो अभी भोग के चक्र में पड़े हैं वो है विषयी। इन तीन कोटि के लोग हैं। तो परीक्षित महाराज कैसे तीनों के लिए कृष्ण कथा लाभदायी है, तीनों के लिए है। तो इसलिए परम उपकारी है, उससे कोई मन नहीं हटेगा। तो इसलिए आप मन में ये मत सोचिए कि नहीं नहीं मैं मन चुक जाएगा सुनूंगा, नहीं 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 प्लीज बोलिए। तो इससे पता चलता है परीक्षित महाराज का कृष्ण कथा सुनने में कितनी लालसा था, ये उनका महान गुण था, महान गुण था। नहीं तो यदि उनको डेथ नोटिस इशू हुआ, वो बाकी कुछ भी कर सकते थे, उसमें तो था तक्षक दंशन करेगा, कोई सांप के जो होते हैं ना आजकल, जो सांप को बस में कर सकता है मंत्र औषधि द्वारा, कितने इस प्रकार के व्यवस्था करते हुए तो चक्रवर्ती राजा थे, कुछ कर सकते थे, और थे भी लोग करने वाला, तक्षक भी इसको भी निष्फल कर देने वाले व्यक्ति थे, वो आए भी थे करने के लिए। हाँ, ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, और परीक्षित महाराज उनको हेल्प लेकर के उनके कर सकते थे, वो उनका भी इतने खुद का समर्थ था, वो सांप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो तो बड़े आनंदित होकर के स्वागत किए इस ब्रह्म सांप को, क्योंकि इनसे बोले मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया, घर द्वार छोड़ करके, सब राज्य पैठ छोड़ कर गंगा आश्रम में बैठ गए और सुनने की इच्छा की। गायत विष्णु गाथा, सबसे पहले उनके मन में यही बात था, बस मुझे कृष्ण के विष्णु की लीला के गान मुझे सुनाओ, बस। वो कृष्ण की लीला सुनने के लिए इतने प्रबल इच्छा था उनके मन में कि मरने के गिनती और थोड़े दिन बाकी था, इसमें भी यही इच्छा रखते हैं, बाकी खाने पीने का इच्छा नहीं रखते हैं। हम लोग तो देखे हैं कि बड़े बड़े लोग घर में तो मर नहीं पाते, हॉस्पिटल में भी कई प्रकार के वेंटिलेटर में और क्या क्या लेटर में सो रह करके मरते समय में उनके जो नज़दीक के लोग आते हैं, क्या इच्छा है ना, बस वही थोड़ा ले आओ, थोड़ा खा लो, मर जाऊँगा पता नहीं, और है ना, नहीं कई ऐसे ऐसे द्रव्य लेकर देते हैं कि दादाजी ने इच्छा किए हैं वही खाने के लिए, वही लेते हैं, खा तो नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी लालसा नहीं जाता, मुँह से खा नहीं पाएंगे, टेस्ट भी नहीं करते लेकिन फिर भी इच्छा नहीं जाता, इसलिए अंतिम इच्छा भी वही प्रकट करते हैं लोग। लेकिन परीक्षित महाराज स्वस्थ थे, सब कुछ भोग सकते थे, लेकिन जानबूझ करके कृष्ण कथा के प्रति इतने लोलुपता था, ये प्रकट प्रमाण है उसका। सब कुछ त्याग करके भरी जवानी में अब गाया तो विष्णु गाथा, विष्णु की लीला सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए इतने उनके अंदर में चाह था, इससे उनको इस प्रकार के चाह के लिए उपयुक्त वक्ता मिले सुखदेव जी, तो उनसे अतृप्त होकर के बोलते हैं, आप बोलते रहिए, ये मत सोचिए कि मैं तृप्त मुझे हो जाएगा, मैं तो निंद्रा भी त्याग दिया, खाना भी त्याग दिया, पीना भी त्याग दिया, अब तो केवल यही कही। तो इस श्लोक में इस अपने कृष्ण कथा कृष्ण लीला सुनने का जो परम लालसा है उसको व्यक्त करके ये श्लोक कहते हैं कि निपृत तरसेर उपगीयमाना, बोले हे सुख मुनि आप मेरे क्या कहते हैं, मुझे की बात छोड़ो, जिनका तृष्णा निवृत्त हो चुका है, बड़े बड़े महापुरुष परमहंस चुड़ामणि गण भी वो हमेशा उपगीयमाना, मतलब गाते तो हैं एक बार बोल करके, तो उन्हें नहीं बार बार गाते ही रहते हैं, उनका काम ही यही बोलते रहते हैं, उपगीयमाना, उपकीयमानात मतलब उप मतलब ऊपर किस अर्थ में लिया जाएगा, मतलब बाकी ज्ञान की चर्चा, ध्यान की चर्चा और कोई चर्चा से कई ऊपर इस कृष्ण लीला की चर्चा करते रहते हैं। और दूसरे उपकीयमानात की और तो अर्थ में आता है जो निकृत तृष्णा हो चुके हैं, जो बड़े बड़े महामुनिगण हैं जैसे नारद जी हैं और सुखदेव जी हैं और परमहंस चुड़ाम, जैसे इसे बड़े बड़े सनत कुमार आदि हैं और बड़े बड़े आचार्य गण हैं, सो जो निवृत्त तृष्णा जिनका हो चुका है वो लोग क्या कहते हैं ना, उपगीय मनात मतलब साउंड सिस्टम लगा करके, जा करके, होम प्रोग्राम करके, कहीं कंग्रेस में आपने बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं, क्या, अरे मूर्ख भोगी जीव सुनत भोग करना चाहता है ना, तो मुक्ति पाना चाहता है, विषय भोग पाना चाहता है, मुक्ति तो इसी में मिलेगा, अरे उससे बढ़कर भोग पदार्थ कोई है ही नहीं, और मुक्त मुक्ति कामी को बोलते हैं तो मुक्त होना चाहते हैं, देखो हम मुक्ति हो चुका है, हमारा मुक्ति हो चुका है, तू तो अभी इच्छा कर रहा है, प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, लेकिन हम कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट करके बैठे तो देखो मैं हमको उपाय बताते हैं, सबसे सरल बढ़िया सीधा उपाय बताते हैं, हमसे सुनो, ऐसे एडवर्टाइज करके मानो बारम्बार गान करते हैं, क्या न गायत कृष्ण गाथा, कृष्ण कथा को सुनो, ओ कृष्ण कथा के द्वारा परम पद को प्राप्त होगा, जो मुक्ति के स्वाद चखना चाहते, मुक्ति तो इसी में ही है, तू इधर उधर चक्कर खाता है मुक्ति के लिए, ये छोड़ो रे मुमुक्षु, क्लास में आकर सुनो, बैठो, छोड़ो सब काम, इसी में मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, ऐसे एडवर्टाइज, इसलिए उपगीय माना, तो बारम्बार जा जाकर जहां तहां गान करते, बाकी छोड़ो इसी में आ जाओ। तो निवृत्त तरसे लोग जो हैं वो स्वयं का तृष्णा तो निवृत्त हो चुका है, कैसे निवृत्त हुआ, न कृष्ण कथा सुन करके, जिनका इतने बड़े फायदा हुआ है इस कारण से तो कैसे नहीं बताएंगे, क्योंकि साधुओं का ही लक्षण होता है, स्वयं उपकृत हुए और दूसरों को उपकार करे तो ही साधु लक्षण होता है, अब भगवान यही चाहते हैं सबसे कि आपने को कृतार्थ करो, परोपकार करो, तो परोपकार करने के लिए उपगीय माना, जो उनका कोई इच्छा नहीं हो तो तृष्णा मिट चुका है उनका, लेकिन फिर भी उपगीय माना, क्योंकि कृष्ण कथा ऐसी लाभदायी है जिनसे परम लाभ को स्वयं प्राप्त किए हैं, तो दुनिया में घूम घूम करके दूसरे को बोलते तुम ये लाभ से वंचित क्यों हो रहा है, उसको प्राप्त करो, तो इसलिए जो निवृत्त तृष्णा नारद आदि महा जोगिंद्र मुनिंद्र गण भी घूम घूम करके इस बात को गाते ही रहते हैं, उपगीयमाना खूब गाते रहते हैं, निवृत्त तरसेर उपगीयमाना, और हो सदी क्या है, ಭೋಷಧಿ ಶ್ರುತ್ರ ಮನೋವಿರಾದ, ಮನೋವಿರಾಮ ಜಿಸ್ಕು ಗಾ ಕರ್ಕೆ ಸುನಾಂಗೆ ಬೋಲೆ ಒಬ್ಬರ ಕ್ಯೂ ಅವನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕತೆ ಹಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಪಡ್ನೆ ದೋ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಪಡ್ನೆ ದೋ ಅವ್ರ ಕೋಯ್ ಚಾಚಾ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಆಯಾ ಹೈ ಅಭಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ವೈ ವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮೀ ಐಸೆ ಕರ್ತೆ ರಹೆಂಗೆ ತೋ ಇಸಿ ಕೇ ವೋ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಕಿ ತುಮ್ ಇಸಿ ಸೇ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಅರೆ ಮೂರ್ಖ ಉಸ್ಮೇ ಕ್ಯಾ ಆನಂದ ಮಿಲೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಈ ಕಚಡಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಆನಂದ ಹೈ ಆನಂದ ಚಾಹತಾ ಹಾ ನಾ ಮೈ ಆನಂದ ಕಿ ಬಾತ್ ತುಮ್ಹೇ ಬತಾತಾ ಹೂಂ ಭವ ಔಷಧಿ ಬೋಲೆ ಇಸ್ ಭವ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಸೇ ಹಟನೆ ಕೆ ಲೀ ತು ಹಮೇಶಾ ಚೇಷ್ಟಾ ಕರ್ತಾ ನಾ ಥೋಡಾ ಸುಖಿ ಹೋನೆ ಕೆ ಲೀ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಸೇ ಬಚನೆ ಕೆ ಲೀ ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಸೇ ಬಚನೆ ಕಾ ಜೋ ಸಬ್ಸೆ ಬಡೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇ ಭವ ಮತಲಬ್ ಬಾರಂಬಾರ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಉಸ್ಕೋ ಭವ ಕಹತೆ ಭವ ಮತಲಬ್ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮನನಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೆ ಶಯನಂ ಇಸ್ಕೋ ಕಹತೆ ಭವ ತು ಇಸ್ ಭವ ಸೇ ಮುಕ್ತಿ ಹೋನಾ ಸಭಿ ಚಾಹತೆ ಹಮ್ ಸಭಿ ಇಸಿ ಚಕ್ಕರ ಪಡೆ ಹೇ ಕೈಸೆ ಜಂಜಾಲ ಸೇ ಛುಟೆ ಔರ್ ಛುಟನೆ ಕೆ ಲೀ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಜಿತನೇ ಉಪಾಯ ಅಭಿ ತಕ್ ತು ಕಿಯಾ ಹೈ ಸಬ್ಸೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಪಾಯ ಮೇ ಬತಾತ ಹೂಂ ಭವ ಔಷಧಿ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇ ಜಿನ್ಕು ಲೇನೆ ಸೇ ಭವ ಸೇ ಛುಟ ಜಾಯೆಗಾ ಈ ಸಂಸಾರ ಜಂಜಾಲ ಸೇ ತು ಛುಟ ಜಾಯೆಗಾ ಏಕ ದವಾಯಿ ಹೈ ತೋ ಜೋ ಲೋಗ್ ಕೈ ದವಾಯಿ ಖಾ ಚುಕೆ ಹೇ ಎಲೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಹೋಮಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಓರ್ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ದವಾಯಿ ಓ ಬೋಲ್ತೆ ಫೇರ್ ವೈ ದವಾಯಿ ಟೂ ಮಚ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲೇ ಲೇ ಕರ್ಕೆ ಮೇರ ಹಾಲತ್ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಚುಕಾ ಕಿತನೆ ಸಿರಪ್ ಕಿತನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಿತನೆ ಮಲಮ್ ಥಕ್ ಚುಕಾ ಮೈನೆ ತು ಫೇರ್ ವೈ ಆಯಾ ವೈ ದವಾಯಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ ಅರೆ ಸುನೋ ತೋ ಸಹಿ ಯೇ ದವಾಯಿ ಐಸಾ ನಹಿ ಕಿ ಕಡವಾ ಲಗೇ ತೀತಾ ಲಗೇ ಮುಂಹ ಮೇ ಡಾಲೋ ಕುಛ ಕರೋ ಬೋಲೆ ಕುಛ ನಹಿ ಹೈ ಫಿರ್ ಬೋಲೆ ದವಾಯಿ ತೋ ಕೇವಲ ಕಾನ್ ಓರೆ ಇಯರ್ ಡ್ರಪ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ ನಹಿ ಇಯರ್ ಡ್ರಪ್ ಭಿ ನಹಿ ಹೈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಹಿ ಹೋ ತೋ ವೋ ತೋ ಕೇವಲ ಸೌಂಡ್ ಹೈ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕೈ ದಬಾ ಹೋತಾ ನಾ ಉಸ್ಮೇ ಕ್ಯಾ ಅರೆ ಓ ದವಾಯಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರೋ ಉಸ್ಮೇ ನಾ ಕೋಯ್ ಖಟ್ಟಾ ಲಗೇಗಾ ನಾ ತೀತಾ ಲಗೇಗಾ ನಾ ಕಸಾ ಲಗೇಗಾ ನಾ ಆಂಖ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೆ ಕೋಯ್ ಡಾಲ್ ಕರ್ ಪೀನಾ ಪಡೆ ಕುಛ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಬೈಠೋ ಆಪ್ಕೋ ಟಚ್ ಭಿ ನಹಿ ಕರೇಗಾ ಕೋಯ್ ಬಿನಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೆ ಕೇವಲ ಬೈಠೋ ಅಬ್ ದೇಖೋ ದವಾಯಿ ಕೆ ಕಮಾಲ್ ನಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ನಾ ಆಪ್ಕೆ ಕಾನ್ ಕೋ ಭಿ ಬಡೇ ಆನಂದ ಲಗೇಗಾ ಶ್ರೋತ್ರ ಮನೋ ಅಭಿರಾಮಾತ್ ಅಭಿರಾಮ ಮತಲೋ ಅತಿ ಆನಂದ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಕಾನ್ ಕೂ ಬಡೇ ರಸಲಿ ಆನಂದ ಲಗೇಗಾ ಔರ್ ಅಂದರ್ ಹೃದಯ ಕೋ ಭಿ ಮನ್ ಕೋ ಭಿ ಮನೋ ಅಭಿರಾಮಾತ್ ಮನ್ ಭಿ ಬಹುತ್ ಆನಂದಿತ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ ಮನ್ ಔರ್ ಕಾನ್ ಕೋ ಆನಂದ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಐಸೆ ಮಹಾ ಬಹುಷಧಿ ಹಮಾರ ಪಾಸ್ ಹೈ ಔಷಧಿ ಮನ್ ಔರ್ ಕಾನ್ ಕೋ ಆನಂದ ದೇಗಾ ಔರ್ ಕುಛ ಹೋಗಾ ಅರೆ ಭವ ಸಂಸಾರ ಕೋ ಐಸೆ ಹೀ ದೇಖ್ತೆ ದೇಖ್ತೆ ಛೂಟ್ ಜಾಯೆಗಾ ತೋ ಪತಾ ನಹೀ ಚಲೇಗಾ ಓ ಬಿಮಾರಿ ತೋ ಐಸೆ ಹೀ ಬಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈ ಬಿಮಾರಿ ಸೇ ಠೀಕ್ ಹೋನಾ ವೋ ಬಿಮಾರಿ ಠೀಕ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಲೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ ಲೋ ವೋ ಬಿಮಾರಿ ತೋ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೈ ವೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಖಾನೆ ಸೇ ಸಂಸಾರ ಸೇ ಮುಕ್ತಿ ಯೇ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೈ ಹಾಂ ಬೋಲ್ತೆ ಕಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲೀ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ನಹಿ 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 ವೋ ತೋ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಮೇನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮೇನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಹಾ ಪರಮಾನಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇತನೆ ಪರಮ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರೆಗಾ ಯೇ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ಫಲ ಯೇ ಮುಕ್ತಿ ಫುಕ್ತಿ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಸಬ್ ಹಾಂ ತುಮೇ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೆ ಲೀ ಜೊ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೇಕರ್ ಬೈಠಾ ವೋ ತೋ ಕುಛ ಭಿ ನಹಿ ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೋ ಸುನೋ ಯೇ ಸಾರೇ ಪರಮಹಂಸ ಮಹಾತ್ಮ ಗಣ ಜೋ ಜಿನ್ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಚುಕೆ ಹೇ ವೋ ಉನ್ಕಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈ ಉಪಘೀಯಮಾನ ನಿವೃತ್ ತರಸೇ ಗಣ ಜಿನ್ಕಾ ತೃಷ್ಣ ನಿವೃತ್ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ ಯೇ ಬಾರಂಬಾರ ಜಾಕೆ ಗಾನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಹೇರಿ ರೇ ಸುನೋ ಹಮಾರ ತೋ ಕ್ಯೂ ಮುಕ್ ಪಡ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಬೋಲ್ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ನಹಿ ಯೇ ಮಹಾ ಔಷಧಿ ಲೋ ಮಹಾ ಮಹೌಷಧಿ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಔಷಧಿ ಹೇ ಭವ ಸಂಸಾರ ಕು ಭವ ಕ್ಲೇಶ ಕು ನಾಶ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಔರ್ ಯೇ ಔಷಧಿ ಔರ್ ಔಷಧಿ ಕಿ ತರಹ ಭಿ ನಹಿ ಹೈ ಅಭಿ ತಕ್ ತು ಜಿತನೆ ಔಷಧಿ ಕಾ ತರ ಅಭಿಜ್ಞತಾ ಹೈ ಯೇ ಐಸಾ ಔಷಧಿ ನಹಿ ಹೈ ಕಿ ಅಬ್ ಉಸ್ಕೆ ಡರೋಗೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಔಷಧಿ ಕಿ ಖಾನಾ ಪೀನಾ ನಹಿ ಪಡ್ತಾ ವೋ ತೋ ಕೇವಲ ಬೈಠ ಕರ್ಕೆ ಸುನ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಯೇ ಔಷಧಿ ಸುನ್ನೆ ಸುನ್ನೆ ಸೇ ಕಾಮ ಕರ್ ದೇತಾ ಹೈ ಕಿತನಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಢಿಯಾ ಹೈ ಅಬ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೇನೆ ಮೇ ಡರ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಖಾನೆ ಮೇ ಡರ್ತೆ ವೋ ಕುಛ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ವೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೇ ಖರೀದ್ ಕೆ ಲಾನೋ ವೋ ನೋ ಭಿ ಬಜಾರ್ ಮೇ ಜಾವೋ ಕಹಿ ಬೋಲೋ ಉನ್ಕಾ ಕಿಸಿ ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಬ್ ತೋ ಮಿಲೇಗಾ ಹೀ ನಹಿ ಪೈಸಾ ಭಿ ಖರ್ಚ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ವೋ ಭಿ ದೇನಾ ನಹಿ ಪಡೆಗಾ ಹಮ ಖುದ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹಮ ಸುನೋ ಓಪನ್ ಯೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಐಸಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೈ ಭವ ಔಷಧಿ ಶ್ರೋತ್ರ ಮನೋ ಅಭಿರಾಮಾತ್ ಕಾನ್ ಕೋ ಔರ್ ಮನ್ ಕೋ ಪರಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಆನಂದ ದೇನೆ ವಾಲೆ ये ऐसे दवाई है और जिससे भव संसार के नाश हो जाएगा। और क्या कहते हैं, का उत्तम श्लोक गुणानुवाद बोलते, ये जो उत्तम श्लोक जिनके चरित्र को चुने चुने उत्तम श्लोक में गाया जाता है, भागवत में श्लोक ही तो है, इस श्लोक के द्वारा भगवान की लीला को गाया गया इसीलिए भगवान का नाम पड़ा उत्तम श्लोक। बोले इसी उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र को जो नहीं सुनता है, उनके गुणानुवाद को, उनके लीला को नहीं सुनता है, ऐसे आदमी देखो दो प्रकार के देखे जाते हैं। बाकी उनको छोड़कर बाकी कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा, सभी बहुत इंटरेस्ट लेंगे। केवल वही दो व्यक्ति दुर्भागा नहीं लेते, कौन, नबीना पशुघ्नाथ। यहाँ तो भागवत में एक ही शब्द कहा गया पशुघ्नाथ, लेकिन उनको अर्थ में दो किया गया। पशुघ्न मतलब पशुहंता, जो पशु को मारते हैं, इसको सादा भाषा में कसाई लिखे हैं, बुचर, वो पशु को बद्ध करते हैं पशुघ्न। बोलते जो दूसरे पशु को मारता है तो महानिष्ठुर है, उनका कुछ और योजना होगा, इसीलिए पशुबद्ध करता है। भोग इच्छा जरूरी है, भोग के पूर्ति कई उपाय से किया जा सकता है, लेकिन दूसरे जीव को कष्ट दे करके, हत्या करके, मार करके अपने सुख भोगने का उनके मन में कैसे, उसके हृदय में तो फिर कुछ रहेगा नहीं, वो तो ऐसे महामहोषधि को छू नहीं सकता, इतने कड़मसुर हृदयग्रस्त होगा वो नहीं पा सकता। इतने निष्ठुर, इतने पापी, इतने अत्याचारी, अन्यायी को कैसे ये पवित्र कथा मिलेगा, क्योंकि पवित्र को प्राप्त करने के लिए आपको ही थोड़ा प्योरिफिकेशन होना चाहिए उसको पाने के लिए। और दूसरा इसी पशु को कहते हैं कि जब हम दूसरे किसी पशु को हत्या करते हैं तब तो हम पशु गुना कहा जाता है, गो हत्यारा और कि जो भी मारते हैं, और दूसरे अर्थ में आचरण पशु का अर्थ होता है हम भी पशु तो है, हम भी दो टू लेग्ड एनिमल्स तो है, हम अपने आप को ही मारते हैं, आत्महनन करने वाला उनके पशु न। बोले कैसे, तुम ही पशु हो, तुम तुझे ही मारते हो, हम किसे मारेंगे, हम तो दूसरे को मार के खाते हैं, हम अपने को थोड़ी मारते हैं। अरे मूर्ख कहीं के, ये जिस प्रकार क्रिया तू करता है, तुझे जिसके लिए बनाया गया, जिसके लिए तुझे शरीर मन बुद्धि इंद्रिय दिया गया है, उसको तो तू पता नहीं किया, और उसको मिसयूज कर रहा है, मिसयूज करके महादुख में डिग्रेडेड कंडीशन में ले जाता है, तो ही आपने आप को हत्या करना। हत्या मतलब क्या होता है, इतने सुंदर मानव शरीर मन बुद्धि दिया गया और उसको सुसाइड कर दिया, अरे भूत बना, ये क्या है, इसके द्वारा क्या क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो इस प्रकार जो ऐसे मानव शरीर प्राप्त करके जो सबसे परमानंद, सबसे उत्कृष्ट चीज जो इसी के शरीर द्वारा केवल किया जा सकता है, उसको ना करके ये अति थर्ड क्लास भोग सुख मत गया, तू बोलते तू आपने आपको मार, आत्मा यू आर कमिटिंग सुसाइड, भक्ति ना करना कमिटिंग सुसाइड है। और कोई कोई आध्यात्मवादी भक्ति छोड़ करके ज्ञान मार्ग लीन मार्ग आज ब्रह्म लीन है, वो भी सुसाइड है, हम उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड, वो भी आत्महनन है। इसी को कहते हैं, प्रभुपाद जी ने एक पद नरोत्तम दास ठाकुर से लिए हैं उनके भजन से, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाभ जिया, जानिया सुनिया भी सखाई, बोले जान बूझ करके तो पैजन खा रहा है, ये संसारिक सुख भोग की लालसा और बीस के अलावा कुछ नहीं है। और इस संसार तुम्हें डाला गया संसार से विरक्त होकर के ये कथा सुन करके ये आनंद प्राप्त करने के लिए, मन में कृष्ण की चिंतन हो, आंख में कृष्ण के रूप को दर्शन हो, कान में कृष्ण कथा के श्रवण हो, हाथ में कृष्ण की सेवा हो, पैर में कृष्ण के स्थान को गमन करना हो, जब इसी प्रकार के जीवा में कृष्ण प्रसाद को टेस्ट करना हो, ये क्या आनंद की बात है यार, है ना। नहीं जो फिस्ट एक बार खाते हैं संडे में, लव फिस्ट, फिस्ट को लव करते तो है ना, नहीं वो कृष्ण को लव करने के लिए थोड़ी आते हैं संडे में जो आते हैं, यही तो कहा गया लव फिस्ट प्रोग्राम, संडे लव फिस्ट प्रोग्राम, संडे को लव करने के लिए आते हैं, किसको लव करते हैं, फिस्ट को लव इसीलिए कहावत भी लव फिस्ट प्रोग्राम तो क्योंकि फिस्ट तो कृष्ण प्रसाद ही है ना, इसलिए इसको लव करो, उसमें ही काम बन जाएगा। तो इसलिए तो कहते हैं कि ये जो हमारे इंद्रिय मिला है श्रोत्र मन कान मन जिह्वा ये उसी को कृष्ण संपर्कीय वस्तु को जो उपभोग करने में लगाओ और उसमें जो आनंद मिलेगा उसको छोड़ करके तू इसी को छोड़ करके जो कचड़ा सब खाता है देखता है सुनता है इसी को कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जान बूझ करके तू विष खा रहा है। मनुष्य जन्म पा करके मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना हो जिया मनुष्य जन्म पाकर तो राधा कृष्ण को भजन भक्ति नहीं कर पाया और बाकी काम करता है तो नोइंगली ड्रिंकिंग प्रेजर जान बूझ करके तू बीस ही पी रहा है बीस खा रहा है और बीस खा करके सुसाइड हो गई तो मरेगा और आगे चल करके मनुष्य जन्म मिलेगा कोई गारंटी तो है ही नहीं क्या बनेगा। इतने सुंदर इतने पावरफुल इतने काम की चीज मनुष्य शरीर मिला इतने मन बुद्धि इंद्रिया सब तुझे मिला तो उसको क्या डिग्रेड यूज किया तुमने यही टीवी पेपर पढ़कर मैंने जिस वर्णन किया गया इसी प्रकार यूज करके तू खत्म कर दिया गया हाय हाय ये तो कमिटिंग सुसाइड है ये भी पशुपन है। बोले इसी प्रकार के लोग जो मनुष्य जीवन शरीर को इंद्रियों को इस काम में लाकर इसी में लगे हैं उसी में रचे पचे हैं तो उनका इच्छा नहीं होगा सुनने के लिए। बोले नहीं नहीं अरे क्ला उसमें क्या है नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा अरे कम से कम फीस्ट को तो लाभ करो नहीं उसको भी नहीं करेंगे और कहीं जाएंगे पार्टी में कसाई और पशुपनाथ कसाई पशुघ्नाथ शब्द तो एक ही है विषयी और पशुघ्नाथ विषयी वो है जो विषय सुख भोगते हैं भोग करके और भोगने के लिए और प्रमोशन चाहते हैं है ना नहीं हाँ उच्च लोग जाकर विषय भोग करेंगे यज्ञ आदि करते हैं अपने आप को मेंटेन कर बड़े डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं वो भी चार नियम पालन करते हैं ब्राह्मण बनते हैं जागीक बनते हैं यज्ञ आदि करके इच्छा क्या है और बढ़िया भोग भोगू है ना नहीं ये विषय और जो विषय जो छोड़ना चाहते हैं तो मुंह क्यों और जो पशुघ्न है वो ऊपर के डिग्रेडेड भोग भोगना चाहते हैं अरे भाई भोग भोगना चाहिए फर्स्ट क्लास प्यूरिफाइड भोग भोगो नहीं 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 पशुघ्न है सबसे घटिया उसको भोगे मरे ये है पशुघ्न कसाई सुख है समझो दोनों ही भोग चाहते हैं एक डिग्रेडेड एंड वन प्यूरिफाइड हाई ग्रेड तो यही दोनों ही ये तो कम से कम विशेष सुख होने के थोड़ा ऊपर जाना चाहता है और उसमें भी विशेष मन छूट जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी भोग भोगा तब भी मन नहीं भरा तब मन हट जाता है भोग से तब मुक्त पाना चाहते हैं लेकिन उनका तो अभी तक इसी में कचड़े फंसे हैं निकले नहीं तो इसी को कहते हैं कौत्तम श्लोक गुणानुवादात बिना पशुघ्नात बिना इस प्रकार कसाई पशुघ्न को छोड़ करके किसका ऐसे होगा। तो इसलिए तीन प्रकार के आदमी के लिए परम लाभदायी परम उपकारी ये कृष्ण कथा किन किन के लाभदायी सबसे ऊपर से होते हैं निवृत्त कृष्णा जस्य सा निवृत्त तरसेर जिनका तृष्णा बिल्कुल है ही नहीं तृप्त हो चुका है जैसे सुखदेव जी है नारद जी है सनत कुमार आदि है बड़े बड़े परमहंस गण है उनका भोग करने की इच्छा है ही नहीं फिर भी वो लगे हुए हैं। बोले क्यों बोले क्या कहें इत्थं भूत गुणो हरि भागवत में कहा गया है बात को आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमा बड़े बड़े आत्मा राम जो आत्मा में रमण करने वाले उनको आत्मा राम कहा जाता है जो भोग में रमण के भोग राम इंद्रिय में रमण के लिए इंद्रिय राम जो जिससे आराम पाते हैं सुख पाते हैं उनको ही राम कहा जाता है अनेक राम हो जाते हैं। तो ये आत्मा राम जो जिनमय पदार्थ में सुख लेते हैं जड़ सुख उनका मिट चुका है जड़ सुख नहीं चाहते उन्हें कोई जड़ केवल चिन्मय सुख जो भोगना चाहते हैं चिन्मय कार्य में लगे रहते हैं चिदात्मवादी तो वो आत्मा राम गण भी जैसे उनके एक उदाहरण दिया गया सुखदेव जी को और बहुत हैं। सुखदेव गोस्वामी आपको पता है जो जन्म लिए उनका उम्र 12 साल हो चुका था मतलब बाइक में चढ़ करके जाता होगा सब स्मार्टफोन चला 12 साल का लड़का ऐसे करता ना ऐसे लड़का बन करके अंदर है मतलब ये सब नहीं करते थे मतलब इतने साइज उनका बड़ा हो चुका था मतलब इतने समझदार हो चुके थे तभी भी गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे 12 साल तक वो बातचीत भी करते थे सुनते थे समझते थे बातचीत करते लेकिन गर्मों से बाहर नहीं आते। व्यास देव जी परेशान हुए, उनके पत्नी तो क्या हाल होगा, मतलब 12 साल का लड़का अंदर पेट में रहेगा तो पत्नी का क्या हालत हो, तो उठ नहीं सकती, करवट भी बदल नहीं सकता होगा, कितनी बुरी दशा में पड़ा होगा, पता नहीं वेंटिलेटर में होगा कि क्या होगा। तो तू व्यासदेव जी प्रार्थना करते, तेरे माता को इतने कष्ट हो रहा, तुम बाहर आ जा। सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं, आई एम ओके हियर। अरे कष्ट हो रहा है तुम ओके कैसे, गर्भ यंत्रणा बड़े जंत्रणा, यंत्रणा तो है लेकिन माया का प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वो बोलते हैं कि भैया आ जाओ, माया के प्रभाव नहीं यहाँ, इतने कर ना थोड़ा कष्ट है लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं, कम से कम माया से तो बचाओ, माया के कष्ट इसी कष्ट से और भारी कष्ट है। तो व्यासदेव जी ने बोले मैं बेटा मैं एग्रीमेंट साइन करता, तू ब्रह्मचारी रखूंगा, तुझे शादी कराऊंगा नहीं, तू आ जा। सुखदेव गोस्वामी बोले बोले पापा आपके एग्रीमेंट करके एग्रीमेंट का आपका यूजलेस है, क्या भल्लू है आपका एग्रीमेंट, नहीं मुझे ऐसा कहता है, अभी जन्म नहीं हुआ मेरे बात में जवाब देता है, एग्रीमेंट भल्लू नहीं, बोले तुम ही खुद फंसे तो मुझे क्या बचाएगा। आप व्यासदेव को चक्कर चला बताओ, ये मेरे बेटा अभी तक है नहीं, इसे बोलते बोले क्या करूं फिर, बोले ऐसे नहीं, अगर एग्रीमेंट करो बाहर निकलना चाहता है कि जो वास्तविक माया के मालिक है, जिनकी माया प्रॉपर्टी है, वो आकर बोल दे कि मेरे माया तुझे काम ना, तब मैं मान जाऊं बाहर आ जाऊं। बोले कौन है इसे, मैं नहीं, ना नहीं आप नहीं, आप जाओ। वो अंदर गर्भ में रह करके एड्रेस बताया, एड्रेस दिया, बोला जाओ द्वारका से बुला करके लाओ। और व्यासदेव जी ऑल दी वे द्वारका आए, आ करके कृष्ण भगवान को बुला कर लिए द्वारकाधीश को, द्वारकाधीश भगवान जा करके प्रार्थना करके बोले बोले ओके मैं एग्रीमेंट साइन करता हूँ, मेरे माया तुझे काम नहीं करेगा, मैं अपने माया को विड्रॉ कर लेता हूँ आपसे। जैसे भगवान ने एग्रीमेंट किए, सुखदेव जी बाहर आए, मातृ गर्भ से बाहर आए, क्योंकि माया से अंदर से लाइन अप कर दिया गया था, उनको कनेक्शन काट दिए थे, ऑफ कर दिए थे, इसलिए मातृ गर्भ से बाहर होते ही कोई स्नान आदि नाभि छेद लालन छेद आदि कोई कर्म छोटा बहुत कर्म होता ना, जात कर्म जिसके कोई जात कर्म भी नहीं हुआ, उपेत कर्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, मोड़ करके थोड़ा रोए कोए कहाँ कुछ कहीं कहाँ कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं हुए, 12 साल तो हो चुके थे, रोएंगे क्या। वो बाहर निकल करके मोड़ करके देखे नहीं मेरे पापा काले हैं कि गोरे हैं, मम्मा कैसे हैं, पूछ मोड़ करके मुंह मोड़ कर देखे ही नहीं, सीधा बाहर निकले तो गए। माँ तो उठ नहीं सका, पिताजी दौड़े, अरे बेटा रुको रुको रुको, पुत्र तन्मयतया तरभो विनेदु, पुत्र पुत्र करके बोलते हैं, वो कहाँ है, रुके सुने क्यों माया के सुई जाओ, अन होने से ये सब काम करता है, सुनते हैं आते हैं कैसे हाँ हेलो, और जिनका ये स्विच ऑफ हो गया सुने गए, वो स्विच ऑफ हो गया था भगवान ने कर दिए थे, माया काम नहीं करेगा, वो सुने ही नहीं देखे ही नहीं चल बैठे। पिताजी रोध होकर चिल्ला करके जंगल के प्रतिदिन को वापस आए, बैठे हो क्या कर, ऐसे जन्म से जो विरक्त महापुरुष थे सुखदेव जैसे, उनको कहा जाए आत्माराम, जो केवल आत्मा में रमण करते हैं और किसी से उनका स्पृहा नहीं है, ऐसे परमहंस चुड़ामणि सुखदेव जैसे उनको आत्माराम कहा जाता है, उनको आत्मा के अलावा किसी में टेस्ट ही नहीं है, शरीर शारीरिक वस्तु शारीरिक संबंध नो टेस्ट आट, केवल आत्मा विषय में रमण करने वाले ऐसे आत्माराम महापुरुष गण भी इसमें कहा गया। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा, जिनका गांठ सब खुल चुका है, गांठ है ही नहीं, कोई बंधन नहीं, जिसका पूर्ण मुक्त है, निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, और उनसे भी जो महान है, ऐसे गांठ खुलने वाले खुले में बहुत हैं, उनमें से महा महा मुक्त पुरुष जो हैं, उरुक्रमे मुक्त पुरुष जो हैं, वो भी निर्ग्रंथ उरुक्रमे, करबंती कुर्बंती अहेतुकिम भक्तिर इत्थम भूत गुणो हरि, वो भी करते हैं ऐसे महा महा मुक्त पुरुष आत्माराम गण भी, वो आकर के आरती करते हैं, क्लास सुनते हैं और प्रसाद खाते हैं, कीर्तन भी करते हैं, लेकिन वो तो आत्मारमण करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक काम के लिए आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि हरि के गुण ही ऐसा है, इत्थम भूत गुणो हरि, ये गुण हरि के गुण ही ऐसा है, इसे महा महा आत्मारामी को खींच कर ला कर बैठा देता है घर में, वर्षों तक घर में रहते हैं, वो घर के काम में लग जाते हैं, हरि जो घर छोड़ के जन्म से चले गए थे, गए थे, लेकिन हरि के गुण इतने महा आकर्षक है, थे इतने महाशक्तिशाली है, ये परम मुक्त पुरुषों को भी खींच कर लाए, बोले बैठो यहां काम करो। तो इसी को उदाहरण देते सुखदेव गोस्वाम के सामने देखिए, जन्म से चले गए थे बाहर जंगल में घूमते बिल्कुल आत्मारमण करने वाले, लेकिन भगवान के गुण परक एक लीला श्लोक सुन लिए, श्लोक सुन करके दिमाग आउट हो गया उनका, ये कहां से आया कैसे, और आए जंगल से आकर घर में रहे, बरसों तक घर में रहे और पूरे पढ़ाई किए, भागवत पढ़े और पढ़े बोल भी रहे, केवल पढ़े नहीं मगर बोल भी रहे उनके साथ, ये भगवान के गुण ही ऐसा है। तो इसी को कहते हैं जो महा महा मुक्त पुरुष है निवृत्त तृष्णा, वो भी बड़े आनंद लेकर के इसमें गाते रहते हैं, उपगीयमाना खूब गाते हैं बोलते हैं आनंदित होते हैं। और जो मुमुक्ष हैं जिन्होंने बेचारे दुख भोग रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं दिस इज टू मच, ओह उससे बचना चाहिए, हो गया बहुत हो गया भाई, और नहीं चाहिए और नहीं, इस प्रकार के जिनका मूड आ चुका है, अब छोड़ना चाहते हैं सब, हटना चाहते हैं, बोले बहुत हो गया नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उनको कहते हैं मुमुक्ष, मतलब मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले, आकांक्षा मतलब इच्छा, मुक्ति की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहा जाता है। तो जो मुक्ति छूटना चाहते हैं इस संसार जंजाल से, ऐसे मुमुक्ष लोगों को भी ये सबसे बड़ा दवाई है, भाई इधर इधर क्यों प्रयास कर रहा है, एक बैठ करके कथा सुनो, बोले परीक्षित महाराज मुक्ति होना चाहते थे ना, 7 दिन में हो गया का, तुम्हारा तो 70 साल में नहीं होता और क्या है। तो इसलिए ये इतनी पावरफुल दवाई है, और उस दवाई का कोई ऐसे कड़वापन अपन नहीं है, कोई दवाई खाने दो तो इसी प्रकार दवाई को कितने आसान दवाई सेवन कर ले, बड़ा आसान और अभिरामात मन को और कान को बहुत आनंद देने वाली, और साइड इफेक्ट से मुक्ति हो जाएगा, ऐसे आनंदित होते होते वो तो मुमुक्ष जन के लिए। तो परीक्षित महाराज अपने आप को बहुत नम्र समझ करके, ये भक्तों का ह्यूमिलिटी होता है, अपने आप को बहुत नीच मान करके कहते हैं हे गुरु जी सुखदेव जी, मैं तो निवृत्त तरसिस करके नहीं हूँ, ना तो मैं मुक्ति की कामना वाले भी हूँ, मैं तो राजा राज्य भोग रहा था, मैं तो नीच विषय हूँ, थर्ड ग्रेड के हूँ, थर्ड क्लास कैंडिडेट हूँ। तो थर्ड क्लास कैंडिडेट विषय के लिए भी तो काम के लायक है, क्योंकि वही विषय जो सुख भोगना चाहते हैं, तो सुख भोगना चाहते ना, सुख किसने प्रकार भोगेंगे ना, हमारे पास सुख भोगने के लिए तो 5 ही मशीन है ना, नहीं बाकी तो कोई है ही नहीं, 5 के द्वारा ही सुख भोगेंगे, चाहे देख करके सुन करके सूंघ करके चख करके छू करके, दिस इज 5, उसी के 5 विषय 5 द्वारा भोगेंगे। बोले इस 5 विषय को सबसे बेस्ट आनंद देने वाले उपाय बताओ ना, क्या आंख के भगवान कृष्ण के दर्शन करते रहो, उस रूप को निहारो, इतने परम सुंदर मनोहारी रूप, ओहो संसार तो भूल ही जाओ, इतने सुंदर रूप, आंख नाक उनके अर्पित चंदन केसर युक्त तुलसी और फूल के घ्राण करो, बाकी संसार के गंध तो चला ही जाएगा। और कान कान में रसली कृष्ण कथा सुनते रहो, मुख अरे फिस्ट को तो लाभ अभी से ही करता है तूने, और जो सही कृष्ण के राज हो गया ऐसे कोई भोग प्रसाद जो मिलेगा टेस्ट करेगा, बाकी का छूट जाएगा सब, 5-स्टार होटल के डिश भी छूट जाए। ये साथ और स्पर्श, बोले ऐसे जो कृष्ण के प्रेम में प्रमत्त है, ऐसे भक्त जो लबालब कृष्ण भक्ति भरा है, उनको स्पर्श करो आलिंगन कर दो, तुम्हारा शरीर भी फेंट हो जाए पसीना उतर जाए। इस प्रकार से हमारा जो इंद्रिय सुख भोग करने का 5 प्रकार के उपाय है, जिसमें 5 विषय भोग करते हैं, उसको इसी प्रकार सुख भोग करो। तो इसीलिए मैं यहाँ बैठो कथा सुनो प्रसाद पाओ, अभी ये सीजन में तो वही अरेंजमेंट करते हैं सब मंदिर में, इन्वाइट करते हैं, आओ देखो खाओ सुनो नाचो गाओ जाओ, और क्या सारे 5 विषय के सुख देने के लिए ये एडवांटेज किया जाता है, ये परम सुख बोलते, ये इस प्रकार से तीनों लोगों के लिए जो विषय है उनके लिए फायदा होगा, जो मुमुक्ष है उनके लिए तो फायदा है, और जो हो चुके हैं वो तो ही करते रहते हैं। तो इसलिए हे गुरु जी सुखदेव जी मुझे ये कथा कहते रहिए, तो इस श्लोक से भगवान कृष्ण के लीला का महानता, सबसे बड़े अथॉरिटी ही वासदी चक्रवर्ती राजा परीक्षित महाराज तभी जमाने में सागरा धरा जितने सागर है भूमंडल है सभी के अधिपति थे, ये उनके स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट है परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी के सामने, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। और निवृत्त तृष्टिका प्रभुपाद जी ने और एक अर्थ कहते हैं, क्योंकि गीयमानात वही लोग गाएंगे जिनका तृष्णा निवृत्त हो चुका है। अब ऐसे तो मिलते नहीं सुखदेव जी आजकल, लेकिन प्रभुपाद बोलते मैं इसी इंस्टीट्यूशन इसलिए किया, ये कृष्ण भावनंद संस्था इसलिए किया, यहाँ से मैं कुछ स्टूडेंट को ट्रेंड अप करूँगा कि विषय इच्छा से बगैर कथा केवल सुने, जिनका कोई पेशेदार कथाकार ना हो, उनमें केवल भजन कीर्तन करेंगे और कृष्ण कथा कहने के लिए ही उनका रुचि है इसलिए कहेंगे। तो इसी प्रकार वक्ता से सुनने से दवाई काम करता है, दवाई काम करता है, उसको गीय मानाद जब निवृत्त तरसी गायन करे उनको कोई सुने तब उसका इफेक्ट मिलता है। और जिनका तृष्णा अभी भरा नहीं है, बहुत भोग चाहते हैं, वो कमाने के लिए आकर कथा करते हैं, उनसे सुनो तो कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टी ओर फंसेंगे, ये भी उस श्लोक के अर्थ निकलता है। तो इसे मैं आज ये श्लोक शुरुआत में लिया क्योंकि कई लोगों के हाँ कौन जाता है सुनने के लिए यार इसे, है ना नहीं, तो इसलिए भागवत प्रमाण है, परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा, इतने बड़े उनका दायित्व हम लोग का दायित्व से कई हजार गुना ज़्यादा होगा, हम सोचते हैं नो आई हैव सो मेनी जॉब, अरे उनसे बढ़कर कोई दायित्व तो इतना नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सब छोड़कर आप जो बैठ करके सुने, क्यों सुने बोलते हैं, और उनको मरना था, हम नहीं मरेंगे क्या, हम जीते रहेंगे क्या क्या गारंटी है हमारा कोई गारंटी नहीं है, तो केवल यही गारंटी है सुन लो, जाना ही गारंटी है, बाकी रहना गारंटेड नहीं है, दिस इज ओनली गारंटेड। तो इसलिए सुनना चाहिए सबको, तो इसलिए अरे भगवान के जन्म जयंती उत्सव आता है तो सब अपना अपना बाकी को साइड रख करके परम लालसा युक्त होकर परम लोग लेकर के अगर हम इस लीला कथा को सुनने के लिए आए, इमिडिएट तो प्रसाद तो मिलेगा ही क्लास के बाद ही तुरंत, और क्लास से पहले भी सबको स्वागत भी किया जाएगा, और दुनिया में ऐसा आपको क्या बोलते रिस्पेक्ट कोई नहीं देते हैं, यहाँ रिस्पेक्ट प्रभु प्लीज आइए वेरी गुड वेलकम ऐसा कौन बोलता है आपको, अपने घर में भी नहीं बोलते हैं, पत्नी को भी बोलती है ऐसा नहीं बोलते, कोई नहीं बोलते हैं, कोई दुकान बाजार ऑफिस में कोई नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं, थोड़ी समझ ला ये बात, वेलकम भी होता है और एंड में मैंने बिगिनिंग और एंड तो सुख ही, एंड में प्रसाद मिलेगा, और बीच में जो सुनेंगे वो श्रोत्र मनो अभिरामात कान को और मन को भी परम आनंद देने वाले, और उस इफेक्ट इफेक्ट का बात क्या कहो, साइड इफेक्ट है मुक्ति हो जाए, मेन इफेक्ट के छोड़ो बात ही परम आनंद। तो इस प्रकार कृष्ण कथा को सुनने के लिए अपने मन में डिसीजन लेना चाहिए कि दैट्स इट, और कुछ ना करो, कम से कम दिस वीक इज रिजर्व फॉर दिस, छोड़ दो बाकी सब, और कोई पूरा 24 घंटा थोड़ी को लिया जाता है, एक घंटा तो है ही, और क्या ले दे करके एक घंटा से कम इतने ही नहीं दे सकते हैं, बाकी अब नहीं जन्माष्टमी कलेक्शन करना है वो जाओ ना कलेक्शन करो, लेकिन ये प्यूरिफिकेशन हो जाए अंदर माल चला जाए तब बढ़िया काम चलेगा, है ना नहीं। तो इसलिए ये जैसे परीक्षित महाराज बोले संसार के हर प्रकार लोगों के लिए, हम भी तो किसी प्रकार से फंसते हैं, अफकोर्स विसर्जन से भी हम और नीचे वाले हैं, परीक्षित महाराज अपने को थर्ड क्लास मानते तो हम लोग अपने को कौन सा क्लास माने, 100 से ऊपर कौन सा क्लास में हम लोग आएंगे, कौन सा ग्रेड में, क्लासलेस क्लासलेस तो होते हैं, आते ही नहीं ऐसे ही क्लास ले क्यों नहीं आते हम क्लास ले से, और क्या है ना नहीं। तो किसी भी कैटागोरी में क्यों ना हो, कितने पतित से पतित क्यों ना हो, अगर आते हैं तो इसमें ही हमारा कल्याण निहित है। तो इसलिए ये परम लाभदायी, प्रत्येक लोगों के लिए लाभदायी, प्रत्येक परिस्थिति में लाभदायी, और विशेष करके ये जो सीजन चल रहा है भगवान ने अपनी तरफ से डिस्काउंट दिए हैं, फुल डिस्काउंटेड रेट में जो मिलता है उसी फायदा को अगर नहीं उठा पाए तो बाकी समय थोड़ी ना मिलेगा। अब जन्माष्टमी आ ही रहा है और दो दिन तीन दिन इसी समय कृष्ण के लीला के जो आनंद जो नहीं ले पाया, बाकी समय क्या लगा हुआ, है, डिस्काउंट रेट में चलता है ना। कभी किसी को बोल ही सकते हैं, जन्माष्टमी की क्लास में जाता है वो बोल सकते हैं, डिस्काउंटेड है। इसी समय अगर नहीं कर पाया तो फिर जीवन में नहीं हो पाया। तो इसलिए सभी अपना अपना मन में ये विचार लेकर के, जैसे परीक्षित महाराज जैसे महाभागवत भक्त, उनके अनुयायी अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज भागवत महापुराण की,
भक्ति आश्रय सही महाराज जी की।